सब लोग हाथ जोड़िए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत भागवतम से पाठ अध्याय 5 सॉरी स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणागणावतारसुजयः प्रियव्रताम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणागणा अवतारसुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियव्रताम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच। बलि भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियवतम् आदिपुरुषस्त्वं हासावलोकम् इति सोवाच। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणागणावतारसुजयः प्रियवतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय आसावलोक इति होवाच भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्त्वं सदयः हासावलोक इति होवाच भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियवतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येन मतितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियवतम् आदिपुरुषस्त्वं सदय हासावलोक इति होवाच भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येनातितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियवतमादिपुरुषस्त्वं तदय आसावलोक इति होवाच भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाक्येन तितरामुदित गुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्त्वं सदयासावलोक इति होवाच शब्दानुवाद भगवान भगवान ब्रह्मा अपि भी भारत हे राजा परीक्षित तत् उनके द्वारा उपनीत आगे लाई गई अर्हणः पूजन सामग्री सुक्त वैदिक शिष्टाचार के अनुसार वाकेन वाणी से अतितराम अत्यधिक उदित प्रशंसित गुणगण गुण समूह अवतार नीचे उतरने के कारण सुजयः जिसकी कीर्ति प्रियव्रतम प्रियव्रत को आदिपुरुषः आदिपुरुष तम उनको सदय दयापूर्वक हास हंसते हुए अवलोकः जिनकी दृष्टि इति इस प्रकार ह निश्चय ही उवाच कहा। अनुवाद इस प्रकार है, हे राजा परीक्षित, क्योंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले, मेरे पीछे दोहराएंगे, हे राजा परीक्षित, क्योंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदय मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले, तात्पर्य, प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा जी सत्यलोक से नीचे उतर, जिसने यह सूचित होता है जिससे यह सूचित होता है कि मामला अत्यंत गंभीर था। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, तप, त्याग तथा भक्ति के मूल कारण उपदेश देने के लिए पधारे थे और ब्रह्मा यह जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अतः ब्रह्मा जी जानते थे कि जब तक वे स्वयं प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमादन पर्वत नहीं जाते, प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने के वाले नहीं सॉरी प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने वाले नहीं। ब्रह्मा जी का उद्देश्य प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था, अतः उन्होंने पहले प्रियव्रत को सदैव दृष्टि से देखा। उनके मंद हास तथा दयापूर्ण भंगिमा से यह भी सूचित हो रहा था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, किंतु प्रियव्रत का भक्ति से संपर्क टूटेगा नहीं, वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसे कृपा सिद्धि अथवा गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि की प्राप्ति कहा गया है। यदि शास्त्र में उल्लिखित अनुष्ठान का पालन किए जाए तो प्राणी प्रायः मुक्त और सिद्ध बन जाता है। फिर भी अनेक पुरुष अपने गुरु या गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रियव्रत ब्रह्मा जी के पौत्र थे और जैसा कि कभी कभी पौत्र तथा पितामह में हंसी हंसी में स्पर्धा होती है, इस प्रसंग में भी प्रियव्रत ध्यान में स्थित के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा थे, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मांड का शासक बनाने पर तुल गए थे। अतः ब्रह्मा की सदैव मुस्कान तथा दृष्टि का अभिप्राय था, हे प्रियव्रत, तुमने संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाने पर तुल गया हूँ कि तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। इस श्लोक में सुक्त वाक्येन एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेद में ब्रह्मा की यह स्तुति है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ब्रह्मा का स्वागत उचित वैदिक स्तुतियों से किया गया, इसलिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। यहाँ पर तात्पर्य अंत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवार्षादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी वैष्णव के चरण कमल में प्रणति निवेदन करते हुए उनसे कृपया प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमद्भागवतम के इस प्रसंग के ऊपर कुछ दोहराने का प्रयास कर सकूं। इस प्रसंग जो पंचम स्कंद भागवतम में चल रहा है प्रियव्रत महाराज के महाराज प्रियव्रत का चरित्र, पिछले कई श्लोक से आप लोग सुने हैं कि प्रियव्रत महाराज ने गंधमार्दन पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे हैं और नारद मुनि उन्हें विभिन्न प्रकार ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं, त्याग तपस्या भक्ति के बारे में, इंद्रियों किस प्रकार संयम किया जाए। तो स्वयंभू मनु ने जिस प्रकार हमने सुने कि उन्हें गृहस्थाश्रम में जाने के लिए यानी पूरे संसार पे शासन करने के लिए उन्हें बोल रहे हैं, किंतु उन्होंने नारद मुनि जैसे एक दक्ष प्रचारक एक दक्ष उपदेशक होने के नाते उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद तो उन्होंने इस प्रकार संसार पर अपना प्रभुता जताना या शासन करने को मना कर रहे हैं। तो इससे इस संदेश को जानकर ब्रह्मा जी ने जैसे पिछले श्लोक में जानते हैं कि सत्यलोक से वो उतर चुके हैं और अपने हंस वाहन में आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे मुनि ऋषि भी हैं और विभिन्न गंधर्व लोक चारण लोक सिद्ध लोक इन लोगों से होकर जब आते हैं नारद मुनि तो विभिन्न प्रकार आतिथ्य उनके सत्कार करते हैं, उनके पूजा अर्चना करते हैं और अंत में उन्होंने आकर कहाँ पहुँचे, प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र हैं सॉरी स्वयंभू मनु के पुत्र जो प्रियव्रत महाराज गंधमार्दन पर्वत के ऊपर चोटिके पर तपस्या कर रहे हैं वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना है कि आज के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग तप संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्शों की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। तो यहाँ से हम पता लगता है कि ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या था। ब्रह्मा जी का उद्देश्य ये नहीं था कि उन्हें एक गृहस्थ जीवन में दें और ताकि इसके एक भौतिक रस आस्वादन करें, नहीं, ब्रह्मा जी एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो वो किस प्रकार इस प्रकार भौतिक जीवन में उन्हें प्रेरित करेंगे प्रिवत महाराज को? उन्हें इस प्रकार जो बाधा दे रहे हैं भक्ति से, भक्ति कर, क्योंकि प्रियव्रत महाराज चाहते हैं कि भगवान को भक्ति करेंगे। अब भक्ति का रस, ये भौतिक भोगों का रस, ये बहुत तुच्छ माना जाता है। भौतिक भोगों का रस भक्ति के तुलना में, भक्ति के सामने जो भौतिक भोगों की जो रस है बहुत तुच्छ माना जाता है। तो ब्रह्मा जी जैसे एक शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, तो कैसे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि तुम भौतिक भोग में जाओ? तो ये असंभव है। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उनके जो महानता है, तपस्या, त्याग, भक्ति, ये सारी चीज़ों को दुनिया को दिखाते हैं। भगवान भी यहाँ पर पिछले श्लोक में, पिछले श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीका को उद्धृत करते हैं कि जो भक्ति में बाधा होता है, दो प्रकार के बाधाएं होता है, कि जो एक शुद्ध भक्त भगवान प्रति भक्ति कर रहा है तो उनमें दो कारण से बाधा उत्पन्न होता है वहाँ पर। एक है अपनी लापरवाही से, यानी वैष्णव अपराध के कारण से। जब वैष्णव अपराध, क्यों वैष्णव अपराध होता है ऐसे? वैष्णव अपराध क्यों होता है हमसे? किस परिप्रेक्ष्य में वैष्णव अपराध होता है? जब हम भौतिक भोगों की ओर आकृष्ट होते, माया के प्रति जब हम क्या करते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, पता नहीं लगता बाह्य दृष्टि से। बाह्य दृष्टि से हम भक्ति कर रहे हैं, नियमित रूप से साधन भजन कर रहे हैं, किंतु अंदर से, अपने हृदय से, मन से, बुद्धि से हमें काम पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, धीरे धीरे काम हमें पकड़ रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें अचानक अपने आप वैष्णव अपराध हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। यानी जैसे ही हमें भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान के भक्ति से रस आस्वादन नहीं कर पाते हैं, तो तुरंत हमें माया के अधीन में आ जाते हैं। कृष्ण भूलिया जय जीव भोगवांसा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। भगवान, हम जब बोलते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया र अधिकार, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के माफी है, फिर जहाँ पर कृष्ण है वहाँ माया नहीं है। परंतु बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि माया भगवान के करीब ही रहती है, भगवान के सामने में नहीं आती है माया, भगवान के पीछे में पूरा करीब में है। जैसे ही हम जीवात्माएं भगवान को भूल जाते हैं, निकटस्थ माया, यहाँ पर शब्द बोलते हैं ना, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे ही हम कृष्ण भूल जाते, कृष्ण को भूल जाते, कृष्ण सेवा से विमुख हो जाते, तुरंत हम माया पकड़ लेती है। हम सोच रहे हैं नहीं, हमारा अस्तित्व वहीं पर है, हम तो भक्ति से रस ले रहे हैं, परंतु हमें पता ही नहीं लगता कि हम भौतिक चीज़ों से भी रस लेने लगे हैं। तो जब हम भौतिक भोग के प्रति आकृष्ट हो जाते, इंद्रियाँ जब सूक्ष्म स्थूल जो रस अपने जो इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट होता है, तब उसी परिप्रेक्ष्य में हमें पता ही नहीं लगता वैष्णव अपराध हो बैठता है। खास करके बड़े बड़े वैष्णव बोलते हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार भक्ति से विमुख हो जाता है, भौतिक, तुरंत भौतिक काम वासना में मन आ जाता है, संसार में मन लग जाता है, तो एक तो है अपने लापरवाही के कारण हम क्या करते हैं, भगवान के भक्ति से, वैष्णव अपराध से हम माया से, माया के अधीन में आ जाते हैं, यानी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है। और ये बाधा को हमने पिछले श्लोकों के तात्पर्य में पढ़े हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत से उधर उद्धृत करते हैं कि एक माताल हाथी के माफी हैं, वैष्णव अपराध रूपी जो दंड है, जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, एक हाथी, माताल हाथी जैसे, और वो क्या करता है ना, भक्ति रूपी उद्यान में घुस जाती है और जाकर क्या करती है, सारे जो लता, भक्ति लता जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं, तो उसको उखाड़ कर, जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है और सारे लता पता से वो सूख जाती है। तो हमारा जो भक्ति वहीं से सूख जाती है, मतलब पूरा सूख नहीं जाती है, कुछ समय तक हमें ये बाधा को उत्पन्न हो जाती है, बहुत दिन तक, खास करके वैष्णव अपराध होने के कारण भक्ति बहुत दिन तक इस प्रकार हमें बैरन लैंड, जैसे क्या बोलते, मरुभूमि जैसे बने रहता, अब देखेंगे अभी तो जुलाई अगस्त इस महीना में जो बारिश के सीजन में रेगिस्तान में आप देखेंगे बहुत हरे भरे लगता है, जैसे लगेगा कि बंगाल बिहार जो यानी केरला जैसे जगह है कोस्टल एरिया हमेशा बारिश होता है, या चेरापुंजी जैसे पूरा हरा भरा देखेंगे अभी रेगिस्तान में। परंतु जैसे ही आप देखेंगे बारिश का सीजन खत्म हो जाता दुर्गा पूजा के बाद और थोड़े दिन के बाद, पूरा एकदम सूखा एकदम पूरा रेत ही रेत देखेगा पूरा। तो इसी प्रकार जैसे ही हम वैष्णव अपराध करते हैं तो तुरंत हमारे जो भक्ति रूपी जो बीज इंटरेस्ट है, सेवा में जो आनंद है, भगवान प्रति जो प्रेम है, भगवान को देखते ही हमारा हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। देखते हैं वैष्णव को देखते ही कोई महाराज आते हैं छोटे से छोटे वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होता है, तुरंत हमें हमारे मुख से आनंद से उल्लास मान मुख से हंसी आता है, ये सब बंद हो जाता है। सारे जो भक्ति के जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं हृदय में शरीर में इस शरीर में सारे के सारे सूख जाता बंद हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में सिर्फ आपको रेत ही रेत देखेगा, पूरा मरुभूमि देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, ना पीने का पानी देखेगा, ना हरे भरे गच लताएं देखेगा, फल फूल आपको मिलेगा खाने के लिए। उसी प्रकार जब वैष्णव अपराध हम कर बैठते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता, भक्ति चीज़ें जैसे हमारे हृदय में है सब कुछ नष्ट हो जाता है कुछ दिनों के लिए, यहाँ तक बहुत लंग समय तक भी हो सकता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करते वैष्णव को चरण में जाकर क्षमा प्रार्थना नहीं करते तब तक। और दूसरी कारण भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं क्या है, भगवत इच्छा से भगवान चाहते हैं, यानी बड़े वैष्णव गुरुजन चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी चाहते हैं कि प्रियव्रत क्या करें संसार में शासन करें, क्योंकि एक महान शासक जब भगवत भक्त जब संसार को प्रथर मार्ग निर्देशन करेगा तो सारे जो जनताएं जो इस दुनिया में सड़ रहे हैं दिशाहीन है, वो लोग अपने पथ नहीं मिल पाता, उनको उचित पथ नहीं मिल पाता, वो भटक रहे हैं दुनिया में, तो वो फिर उचित रास्ता पे आ जाते हैं और भगवत भक्त में लग जाते हैं। इसके वजह से कभी कभी भगवान क्या करते हैं ये भक्ति में बाधक होते और उन्हें संसार में उन्हें शिक्षा देने के लिए पथ प्रदर्शन करने के लिए गुरु के रूप में शासक रूप में उन्हें इस प्रकार इस संसार में भेजते हैं, सांसारिक कार्यकलाप में लगाते हैं। जैसे कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं बहुत से भक्त होते हैं ये भौतिक दुनिया से जाते हैं अपने साधन भजन के माध्यम से, कैसे भी गुरु के कृपा से भगवान की कृपा से इस दुनिया से जाते हैं भगवत धाम जाते हैं, वो जाते हैं अपने मस्त में रहते हैं भगवान के पास आनंद में रहते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे विशेष जीवात्माएं होते हैं वो बार बार जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं, किस काम के लिए, अपने गलती के कारण आते हैं नहीं, वो दूसरों के कल्याण हित के लिए आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी शास्त्र में लिखा है ना कि जो गुरु जब रिस्पॉन्सिबल लेता है किसी शिष्य का कि मैं उन्हें भगवत धाम भेजूंगा भगवत धाम लेकर ही जाऊंगा, तो गुरु का जो ये कर्तव्य है जब तक शिष्य नहीं जाता है दुनिया से संसार से अपने लापरवाही के कारण, तब तक गुरु इस धराधाम में आना पड़ता है उन्हें और आकर उन्हें शिक्षा देकर फिर लेकर जाता है। तो इस प्रकार हमने दो कारण हमने मिला हमें कि भक्ति विनोद ठाकुर के मुताबिक एक है अपने लापरवाही के कारण अपराध के कारण, दूसरा कारण यह है कि जब भगवत इच्छा से साधु महाजन गुरुजन के इच्छा से, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते हैं प्रियव्रत जैसे एक महान राजा शासन करे और दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करें। तो हमने ये आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि तात्पर्य के अंत में कि ब्रह्मा जी आए थे प्रियव्रत महाराज को इस प्रकार भौतिक भोग देने के लिए या संसारिक सुख भोगने के लिए प्रेरित करने के लिए, ऐसे नहीं, उन्होंने क्या करने के लिए आए थे, दूसरों के हित के लिए कल्याण के लिए। एक श्लोक के तात्पर्य में भगवान बोलते हैं, अभी सॉरी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक दो लाइन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड हित के शरीर। ये सुखदेव गोस्वामी आगे बोले इस ब्रह्मांड के आदिजीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। यहाँ पर बताएं कि भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। ये ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। एक जीवात्मा भगवत धाम चले जाएं और बाकी सारे संसार भरी जो ब्रह्मांड भरी लोग जो जनताएं हैं ऐसे पीड़ित रहें, ये अच्छा नहीं है। तो कभी कभी भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार एक महान साधु या संतों को इस प्रकार दायित्व देते हैं कि इन्हें भी शिक्षा दीजिए और ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि वो भी भगवत धाम जा सकें। यहाँ पर तात्पर्य की शुरुआत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा जी सत्यलोक से नीचे उतरे, जिससे यह सूचित होता है कि मामला अत्यंत गंभीर था। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के मूल्यों का उपदेश देने के लिए पधारे थे, और ब्रह्मा यह जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अतः ब्रह्मा जी जानते थे कि जब तक वे स्वयं प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमार्दन पर्वत नहीं जाते, प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने वाले नहीं। ये ब्रह्मा जी जानते थे कि जब नारद मुनि जैसे एक उपदेशक वो किसी भक्त को अगर उपदेश दें, भक्ति के बारे में सिखाएं, तो उनका जो लक्ष्य है, नारद मुनि का जो लक्ष्य है, ये असफल नहीं रहता, कभी भी ये असफल नहीं रह सकता है। तो ब्रह्मा जी ये जानते थे, एक दक्ष प्रचारक होने के नाते, दक्ष उपदेशक होने के नाते नारद मुनि किसी भी जगह पर वो अपने खेती कर लेते हैं। जैसे एक किसान क्या करता है, वो भी जानते हैं, एक दक्ष किसान जानता है कि किस जगह पे, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मौसम में किस प्रकार बीज डालें तो वो एक अच्छा फसल उग सकें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ किधर भी किसी भी फसल उग सकता है, ऐसे नहीं, एक दक्ष किसान चाहिए, एक उर्वर जमीन चाहिए, तब फिर एक अच्छा फसल उग सकता है। नारद मुनि जैसे एक दक्ष प्रचारक वो जानते हैं कि कौन है उपयुक्त पात्र जिन्हें मैं भगवत भक्ति दे सकूं और अपना जीवन सार्थक कर सके। वो ऐसे नहीं कि वो विचार करते हैं, वो ढूंढते हैं, साधु लोग ढूंढते हैं कि ये है वो है, नहीं, साधु लोग सभी के प्रति एक समान जैसे एक जैसे हैं। साधव दीनवत्सल, देवताओं में साधुओं में अंतर ये है कि देवता लोग जो है छाया व कर्म सचिव, जैसे जैसे हाथ है, हाथ हिलता जब छाया हिलता, छाया हिलता मतलब हाथ के ऊपर निर्भर करता छाया का हाथ, परंतु जब हाथ बंद कर हिलना बंद कर देता तब छाया नहीं हिलता है। उसी प्रकार जो देवताओं के प्रति जो हम समर्पित करते हैं कुछ, हमें उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उसी मुताबिक वो हमें पुरस्कृत करते हैं और वो हमें देखते हैं, वो हमें देते हैं कुछ बर देते हैं। वो डिपेंड करता हम किसी हिसाब में कितने उन्हें दिए देवताओं से, और वो दूसरी बात है जो व्यक्ति उन्हें देता उन्हें देते हैं सिर्फ, वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पूजा किया मैं उन्हें प्रदान करूं। जैसे ब्रजवासियों ने उन्हें जीवन भर इस प्रकार उनकी पूजा अर्चना किए तो हर समय उन्हें बारिश वगैरह अच्छा से जितने बारिश चाहिए इतने दे रहे थे। जैसे ही ब्रजवासी ने कृष्ण के कहने पर बंद कर दिए, इंद्रजज्ञ बंद कर दिए, तो क्या किए इंद्र ने, क्या किया उसका अपना धृष्टता दिखाने लगा, है कि नहीं। यानी देवता लोग छाया व कर्म सचिव, जैसे ही हाथ हिलेगा और छाया हिलेगा, जैसे ही पूजा जो उपासक जिस देवता का पूजा जितनी मात्रा में पूजा करेगा उतनी मात्रा में उस उपासक को वो अपना फल देगा। परंतु जो साधु होता है, साधव दीनवत्सल, निज कार्य नहीं तब जानिवार, महंत स्वभाव यही तारित पामर, निज कार्य नहीं तब जानिबार। जो महंत होता है, जो साधु होता है, वो दीन वत्सल, हर किसी को वो एक समान जैसे देखते हैं, हर किसी को। अब फिर भी कौन भक्त यानी कौन शिष्य कितने मात्रा में किस ज्ञान आहरण कर सकता वो भी जानते एक दक्ष प्रचार करने के नाते। तो ये है अंतर है एक भक्त में, भगवत भक्त में, दक्ष प्रचारक में और एक देवताओं में। तो नारद मुनि इस प्रकार वो जानते हैं कि प्रियव्रत जैसे एक शिष्य है, उन्हें अगर मैं ज्ञान प्रदान करूं वो इसे ग्रहण कर पाएगा। पहले से भी आप जानते हैं दक्ष के पहले जो जितने शिष्य बच्चे थे उनको भी उन्होंने ज्ञान प्रदान करके उन्हें ब्रह्मचारी बना दिए, भगवत धाम भेज दिए। फिर दोबारा उन्होंने दक्ष ने जो संतान उत्पन्न किए थे उन्हें भी इस प्रकार कर दिए। कोई भी महान महान भक्त देखेंगे उनके गुरु नारद मुनि होंगे। आप देखेंगे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़े से बड़े महान मुनि जो ऋषि होंगे आप देखेंगे नारद मुनि उनका गुरु होंगे। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं और भगवान के भक्त एक शुद्ध भक्त के क्या करते हैं, जो भगवत भक्ति को थोड़े बाधा डालते हैं उन बीच में। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो इस संसार को दूसरों को भी उद्धार कर सके। यहाँ पर जो जीवन में यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आखिर लाइन में बताते हैं कि जिससे वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। हमने पिछले जो श्लोक में पढ़कर आए हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे थे, आप लोगों को याद होगा शुरुआत में, कोई बता सकेंगे? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को दो प्रश्न पूछे थे, एक बताइए, कोई बताइए प्रभु। हाँ, आपने दो प्रश्नों को जोड़ के बोल दिए, ठीक है। तो उन्होंने सर्वप्रथम परीक्षित महाराज ने ये पूछे कि जो व्यक्ति आत्मदृष्ट है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, जो व्यक्ति जो आत्मतुष्ट है यानी जो व्यक्ति भगवत भक्त में ही आनंद लेता है, वो व्यक्ति किस प्रकार एक संसार जीवन में, गृहस्थ जीवन में आने के लिए इच्छुक हुआ? और क्यों ऐसे गृहस्थ जीवन में आने के इच्छुक हुआ? क्या इसमें खराब किया, बुराई किया है? क्योंकि जो गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन है, भगवत भक्ति को छोड़कर संसार में घुसना, सांसारिक कार्यकलाप में भाग लेना, इसका मतलब है कि कर्मफल के बंधन में आ जाना। वहाँ पर हम क्या होता है ना, कर्मफल का बंधन आता है, पाप पुण्य ये चलते रहता, क्षीण पुण्य मरते लोकं विसंति यथा, हम जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य कर्म कमाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, फिर ये है जो पाप पुण्य का चक्कर चलते रहता। जैसे ही हम इस प्रकार सांसारिक भोग में लग जाते हैं तो कर्म बंधन का चक्र चलते रहता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछते, पहला प्रश्न उनका था कि जिसे आत्मतुष्ट है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, आत्मतुष्ट मतलब आत्मा में ही रमण करते हैं प्रियव्रत महाराज, फिर भी वो संसार में कैसे आ गए? तो दूसरा प्रश्न था, और दूसरे प्रश्न एक चौंके देने वाली बात है, ये सबसे उनको आश्चर्य कर रहा था कि संसार में प्रियव्रत महाराज ने संसार में इतने आसक्त हो गए थे अपने पत्नी बच्चों राज्यों में, इतने आसक्त होने पर भी फिर ये भगवत भक्त में कैसे मन लगा पाए और अंत में मुक्ति लाभ कर पाए, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाए, ऐसे कैसे संभव हो पाया? तो ये प्रश्न उनको दूसरा प्रश्न था उनका। तो परीक्षित महाराज के इन दोनों प्रश्नों में सुखदेव गोस्वामी ये जो अध्याय है शुरू करते हैं, सॉरी ये जो अध्याय और ये जो स्कंद है शुरू करते हैं, पंचम स्कंद। फिर आगे आगे को वर्णन होगा उनके पुत्र अग्निन्द्रियों, फिर ऐसे आगे आगे वर्णन चलते रहेगा। ये जो स्कंद है श्रीमद् भागवत में जो पंचम स्कंद है, ये बहुत बहुत ये एक ज्ञान की जो राशि है इसे समझना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं इस अध्याय को समझना, इस स्कंद को समझना। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते वक्त उन्होंने बोलते हैं कि ये हम भी मैं भी ठीक ठीक से उसे बता नहीं पाऊँगा। जो खास करके जो ग्रह ब्रह्मांड के जो स्थिति है जो आगे आगे आएगा, जिसको आधार करके ये जो इस स्कंद को आधार करके हमारे जो मायापुर में जो वैदिक प्लानिटेरियम है तो वो बन रहा है, तो इसे समझना आसान बात नहीं, बहुत कठिन है ये। फिर भी जैसे ही आचार्य लोग ने हमें बताए हैं उस मार्ग पर हम चलेंगे, उन्हें अनुसरण करेंगे तो फिर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षित महाराज इन दोनों प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये स्कंद जो है पंचम स्कंद के बारे में पूर्ण वर्णन करते हैं, और उन्होंने उनका प्रश्न आप हमने सुने कि सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न के उत्तर में आगे आगे बताते हैं, और ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी आते हैं आके प्रियवत महाराज जो ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है और भगवान का इच्छा के विरुद्ध में हमें नहीं जाना चाहिए, आगे आगे बताते हैं। और यहाँ तक कि स्वयंभू मनु उन्हें समझा के थक गए, नारद मुनि उन्हें तो अपने ज्ञान दिए, परंतु एक भगवत भक्त होने के नाते ब्रह्मा जी भी उन्हें उपयुक्त ज्ञान दिए। और उनका ब्रह्मा जी का ये लक्ष्य था, आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हर प्रकार के कार्यकलाप करते हुए भी वो किस प्रकार भगवत भक्ति में मन लगा पाए और अंत में सिद्धि प्राप्त कर पाए, ये दिखाने के लिए ब्रह्मा जी आए थे और उन्हें इस प्रकार प्रेरित किए। भक्त जो हर हालत में वो भगवत भक्ति करते रहते हैं, किसी भी हालत में, चाहे वो भक्त भगवत भक्तों के बीच में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, नरक में हो, किसी भी हालत में। हमने देखा है कि जैसे प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, खास करके जो दूसरी है जो बाधा डालते हैं, जो दूसरी प्रकार बाधा, पहले बाधा तो जो हमारा अपराध के कारण जो बाधा सृष्टि होता है भक्ति में, दूसरी प्रकार जो बाधा है भगवत इच्छा से, शुद्ध भक्त की इच्छा से, ये भौतिक दुनिया में दूसरों को सहाय करने की इच्छा, उससे करते वक्त हमारे भगवत भक्ति में जो बाधा आता है तो उससे कभी कभी हमें लगता है कि हमें भगवत भक्ति छोड़ दिए हैं या वो भक्त भगवत भक्ति छोड़ दिया है। प्रभुपाद जी बोलते कुछ काल तक, कुछ समय तक इस प्रकार वो भगवत भक्ति से अलग रहता प्राय, परंतु फिर भी वो दोबारा वो ग्रहण कर लेता है। परंतु कुछ ऐसे भक्त होते हैं तो वो बाधा होने पर भी भगवत भक्त में जुड़े रहते हैं, कितने बड़ी से बड़ी बाधा आने पर भी तो वो भगवत भक्ति में जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले मैं दूसरे बताऊंगा कि भगवत भक्ति से बिछोड़ होने के बाद वो फिर माया में लग जाते हैं, फिर बाद में भगवत भक्ति में आ जाते हैं। एक है जैसे हमने प्रभुपाद जी का तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे जय विजय है, जय विजय जब आध्यात्मिक जगत से ये भौतिक जगत में आए तो प्राय भगवत भक्ति छोड़ दिए, यानी भक्ति विरोधी कार्य किए, भगवत विद्वेषी कार्य करने लगे, ठीक है, यानी हम बाहर तौर से देखा जाता है कि उन्होंने भक्ति छोड़ दिए प्राय, है कि नहीं, उनका भक्ति में बाधा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि उन्होंने सारे जो ब्राह्मण वैष्णव है भगवत भक्तों को सताने लगे, भक्ति छोड़ दिए उन्होंने प्राय, परंतु बाद में फिर जो भगवान ने मारे उन्हें सदगति प्रदान किए, फिर उन्होंने दोबारा भक्ति प्राप्त किए। ये है रहा कि जो व्यक्ति भक्ति भगवत भक्ति में उच्च स्तर में है, फिर किस कारणवश भगवान, क्योंकि यहाँ पर भगवान भी चाहते हैं कि जय विजय जाएं भौतिक दुनिया में, मेरे से युद्ध करें और मैं इस प्रकार लीला आस्वादन करूं, तो इसके कारण से ये लोग आए वहाँ से आध्यात्मिक जगत से ये भौतिक दुनिया में, और बीच में भक्ति प्राय छोड़ ही दिए, ठीक है, और बाद में अंत में उन्होंने भगवान ने उन्हें मुक्ति प्रदान किए। कुछ ऐसे कुछ भक्त होते हैं जिन्हें ये असुर शरीर में या मनुष्य शरीर में या किसी भी शरीर में रहने पर भी वो अपना भगवत भक्ति बनाए रखें। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे वृत्रासुर, हाँ वृत्रासुर का उदाहरण लेते हैं हम, जैसे वृत्रासुर है, वृत्रासुर जैसे हम देखेंगे उनका स्थिति आप देख के हमें लगता है कि कितने भयानक स्थिति में वृत्रासुर थे। जब युद्ध क्षेत्र में इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, एक हाथ कट चुका है पूरा, शरीर से खून बह रहा है, फिर भी वो भगवत भक्ति नहीं छोड़ रहे थे तभी भी। हालांकि थोड़ी से बीच में वो फिर इस प्रकार दूसरों को सताए थे, ब्राह्मण वैष्णव को सताए थे। इससे सबसे बड़े ज़्यादा उदाहरण है जैसे पांडव जैसे है, जैसे कुंती महारानी की बात बताएं, इस प्रकार जो उनका जो भक्ति से उन्हें थोड़ा ये भौतिक दुनिया में आना, इस प्रकार पांडवों को इस प्रकार सजा देना, यानी क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है कि शासन करना, हर दुनिया पर शासन करना, और क्षत्रिय होने के नाते असत कार्य नहीं देख सकते वो कभी भी, असत कार्य उनके सामने में नहीं हो सकता है, दुर्नीति नहीं हो सकता है, शोषण नहीं हो सकता है। परंतु इतने होने पर भी जो पांडव लोग थे उन्होंने अपने इस प्रकार दुर्नीति नहीं कर किए, उन्होंने इस प्रकार असत कार्य को उन्होंने भगवत भक्ति की इच्छा समझकर अपने दंडों को स्वीकार किए। उन्होंने जैसे ही चाहे भगवान जैसे चाहते हैं, भगवत कृपा के ऊपर वो निर्भर करते रहे, और उनका भक्ति किसी भी हालत में कम नहीं हुई, बल्कि उनका भक्ति कभी कभी बढ़ ही जाता था। कुंती महारानी के कथन से हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हर हालत में उनके भक्ति उच्च स्तर पे था, जब राज्य होता था तभी भी, जब राज्य नहीं रहा तभी भी, जब फिर राज्य आ जाता है तभी भी। कुंती महारानी बोलते हैं कि उनका एक कथन से हम पता चलता है कि वो भक्ति में कितने उन्नत थे। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, जब हमारे पास राज्य नहीं था, विपद एक के बाद एक विपद अपने पर आता था, जब भी हमें आपको स्मरण करते थे आप तुरंत हमें आते थे, हमें साज दर्शन आपके दर्शन देते थे, और आपका दर्शन पाना मतलब क्या है, जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाना है। परंतु आज हमारे पास ये राज्य आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, परंतु आप चले जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो यानी जैसे ही भगवान द्वारका की ओर जाते हैं तो वो विरह दशा को सहन करने के लिए असक्षम रहती हैं, तो विरह दशा सहन करने के लिए तैयार नहीं है कुंती महारानी पांडवों के बाद। तो इस प्रकार उनकी जो भक्ति है, हालांकि भगवत भक्ति से उन्हें उनको जैसे कोई व्यक्ति सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वो भक्ति भी ठीक ठाक कर पाएगा प्राय, है कि नहीं, अगर थोड़ी दिमाग है तो। अगर दिमाग नहीं है, भोग प्रवृत्ति है उनके पास, हो नहीं हो हर हालत में वो कुकार्य में लगेगा। परंतु साधारण तौर पर हम सोचते ना कि मैं थोड़ा ठीक ठाक अपने उपयुक्त स्थिति पर आ जाऊं फिर मैं भगवत भक्ति करूं, ये एक नॉर्मल बात है। परंतु जो पांडव लोग थे उनको ऊपर नीचा किया जा रहा था, है कि नहीं, उनके ऊपर एक के बाद एक विपद आता था, उनके भगवत भक्ति करना उनके पक्ष में प्राय असंभव प्राय होता था, भगवत भक्ति में बाधा डालते थे। भगवान भी ये करते थे, भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर इस पांडवों के माध्यम बनाकर सारा संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार प्रयास कर रहे थे भगवान। तो इसी हालत में पांडव लोग भी क्या करते थे, भगवान के प्रति जो भक्ति है कभी नहीं छोड़ते थे। तो हमने दो प्रकार की स्थिति देखे कि जो कुछ भक्त होते हैं भगवत भक्ति छोड़ दिए हैं बीच में, जो भौतिक दुनिया में आए भगवत धाम से, और कुछ भक्त हैं जो भौतिक दुनिया में आने पर भी हर हालत में भक्ति को बनाए रखे, चाहे सुख की स्थिति में हो चाहे दुख की स्थिति में हो। तो ये भगवान ये करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ जो दो रीजन हमने बताए प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में जैसे बताए हैं कि भगवान की इच्छा होता है ये ऐसे करने पर, खासकर विशेष जीवात्माएं पर, सभी के ऊपर नहीं है। साधारण जीवात्माएं तो अपने विधि निषेध को पालन करते हुए हमें मुक्ति प्राप्त होता है, यानी भगवत भक्ति प्राप्त होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या होता है, उन्हें कृपा प्राप्त होता है दूसरों भगवान के, और भगवान के शुद्ध भक्तों से कृपा प्राप्त होता है, तब फिर वो भक्ति में लग जाते हैं। तो आज के इस श्लोक में हमने इस प्रकार हमने आलोचना किए कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आ चुके हैं, और प्रियव्रत महाराज, स्वयंभू मनु और कौन, नारद मुनि जाकर उन्हें स्वागत कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार अच्छे वचन से उन्हें प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, उन्हें देखकर उन्हें हृदय से बहुत सौम्य दृष्टि से उनके प्रति दया प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने जैसे व्यंगात्मक दृष्टि से तात्पर्य में बोले हैं कि स्वयंभू मनु सॉरी प्रियव्रत महाराज अपने तपस्या में अडिग है, वो निश्चय ले चुके हैं कि वो भगवत भक्ति ही करेंगे, परंतु ब्रह्मा जी का लक्ष्य और कुछ है, और जो प्रियव्रत महाराज का सॉरी स्वयंभू मनु जो बोल रहे हैं उन्हें, अब ब्रह्मा जी उनमें हंसते हुए बोलते हैं, उनका हंसने का ये अभिप्राय था कि मैं तुम्हें तो गृहस्थ आश्रम में ही ये संसार को शासन करने के लिए ही भेजूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का अंतिम उद्देश्य ये था कि उन्हें इस संसार को दिखाऊंगा कि किस प्रकार एक प्रियव्रत जैसे एक भगवत भक्त हैं, हर हालत में भी वो भगवत भक्ति करता है और अंत में भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रखते, समय हो चुका है। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे।